परमेश्वर हमें, मुझे और आपको, अपने लोगों को अद्भुत आशीष देने वाला परमेश्वर है, ये सच है। और जो सबसे बड़ी आशीष है उसकी उस स्थान की है जहाँ पर मुझे और आपको, हर एक विश्वासी को, आगे आने वाले दिनों में रहना पड़ेगा। अब मैं एक एक पद आपके सामने लाना चाहूँगा। 14 पद क्या कह रहा है वो? यौना की ओर से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो एशिया में हैं। 7 कलीसिया के प्रकाश वाक्य में कई बार 7, 7, 7, 7, 7 आया। 7 सिद्धता को प्रकट करता है, नंबर 7 परिपूर्णता को प्रकट करता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन परमेश्वर की कार है। और यहाँ तक कि ये प्रकाश वाक्य की पुस्तक उस चीज को प्रकट कर रही है कि अब वो सिद्धता के साथ सब कुछ संपूर्ण हो रहा है। और इसलिए 7 दीवट आपको मिलेंगे, 7 स्वर्गदूत आपको मिलेंगे, 7 आत्माएं आपको मिलेंगी, 7 कलीसियाएं आपको मिलेंगी। कई बार 7, 7, 7, 7 का शब्द इसमें उपयोग हो रहा है। तो ये 7 कलीसियाएं जो एशिया में माइनर में कलीसिया थी, उन कलीसियाओं को परमेश्वर इन पदों को लिखवा रहा है। जब हम 7 कलीसियाओं को देखते हैं, नाम जो एशिया में है उसकी ओर से जो है, आगे चल के क्या है, 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के समक्ष है। कई लोगों का अलग अलग मत है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन में देखें तो यशायाह उसके 11वें अध्याय में और उसके 2 पद में, वहाँ पर परमेश्वर के लिए जो 7 उसके मुख्य गुण हैं उसको दर्शाया गया है। 2 पद यहाँ तक लिखा हुआ है, तब यहोवा का आत्मा पहला बुद्धि और समझ का आत्मा, अगर मैं इसको इस तरह से पढ़ूँ, बुद्धि का आत्मा दूसरा, समझ का आत्मा तीसरा, युक्ति का आत्मा चौथा, पराक्रम का आत्मा पांचवा, ज्ञान का आत्मा छठा, यहोवा के भय का आत्मा 7। तो ये 7 आत्माओं का यहाँ पर जिक्र है, अर्थात ये परमेश्वर के एक वो गुण है जिस गुण में होके परमेश्वर की परिपूर्णता दिखाई देती है, जिसमें परमेश्वर की सिद्धता दिखाई देती है, जिसमें परमेश्वर की महानता को दिखाई देते हैं। परंतु जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो ये उस 7 उन आत्माओं से संबंधित नहीं है, लेकिन आगे चल करके हम देखेंगे ये 7 आत्माएं उन 7 स्वर्गदूतों से वर्णन है जो परमेश्वर के सिंहासन के साथ साथ खड़े हुए हैं। आगे चल के जब हम 4वें 5वें अध्याय में आएंगे तो हम देखेंगे। सो ऐसा है, जब हम इन सारे बातों को देखते हैं तो ये 7 कलीसियाएं के 7 सिद्धांत हैं। ये 7 कलीसियाएं कौन सी 7 कलीसियाएं? 11 पद में है, 11 पद में, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख, और 7 कलीसियाओं अर्थात इफिसस, स्मुर्ना, पिरगमुस, थुआतीरा, सुर्दिस, फिलाडेल्फिया, लौदिकिया को भेज दे। ये कलीसिया उस समय थी, ये कलीसिया उस समय थी, और इन कलीसियाओं को लेकर के इनको ये पत्र लिखा गया है और इन कलीसियाओं में भेजा गया है जो एशिया माइनर में, ताकि वो कलीसिया के लोग, जो विश्वासी लोग हैं, जान लें परमेश्वर की क्या आरंभिक, क्या परमेश्वर की योजना है, उस योजना को समझने के लिए, ताकि वो विश्वासी जो हैं कलीसिया के लोग हैं जो उसको समझ सकें। अब ध्यान रखें कि उस समय और भी अधिक कलीसिया चेतावनी में थी जिस समय ये काष्ठवाक्य को लिखवाया गया है, और इन 7 कलीसियाओं की विशेषताओं को लेके, या उनकी जो भलाइयाँ हैं, या उनकी जो निर्बलता हैं या कमियाँ, उनको लेकर के परमेश्वर का आत्मा पत्र लिखवा रहा है, ताकि इसके द्वारा न केवल वो कलीसिया, लेकिन उस कलीसिया के माध्यम के द्वारा विश्वासी लोग अपने जीवन को देख सकें कि हमारा जीवन कैसा है, और जहाँ सुधार की जरूरत है वहाँ सुधार प्राप्त कर सकें, जहाँ प्रोत्साहन की जरूरत है वो प्रोत्साहन प्राप्त कर सकें, जहाँ चुनौती की जरूरत है वो चुनौती प्राप्त कर सकें। यह है, लेकिन जब इन 7 कलीसियाओं को हम पढ़ते हैं तो इन 7 कलीसियाओं में करीब 7 सिद्धांत हैं जो हर एक कलीसिया से संबंधित है। जब हम कलीसिया के विस्तार में जाएंगे तो हम देखेंगे, लेकिन उन 7 सिद्धांतों को लाना चाहूंगा। पहला सिद्धांत, यीशु मसीह प्रत्येक शिष्य को जानता है। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक शिष्य को जानते हैं। जो इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह उसको जानता है। यहाँ पर हम जितने जन बैठे हैं, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, प्रभु आपको जानता है। पिछली बार हम उस पद को देख रहे थे जो इब्रानियों उसके 4 अध्याय उसके 2 पद में है कि कितने समय तक उनको सुसमाचार सुनाया गया है, लेकिन उस सुसमाचार को सुनने के बाद भी उन्होंने न केवल विश्वास किया और उसको ग्रहण नहीं किया। और बार बार ये मेरे और आपको चुनौती देता है, क्या हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन करके किस प्रकार का प्रतिउत्तर दिया है। पहली सिद्धांत जो है इन कलीसियाओं से संबंधित, प्रभु यीशु मसीह हर एक शिशु को जानता है। दूसरा, मसीह यीशु मसीह पवित्रता का सिद्धांत चाहता है। आपको मालूम उस समय भी बहुत ऐसा था, जब कलीसिया उस समय सताया जा रहा था तो उस समय कई कारण थे। उसका कारण ये था कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी गलत शिक्षाएं उस समय शुरू हो गई थी, और वो गलत शिक्षाएं थी जो प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को कम कर रही थी, और किसी न किसी रीति से वो व्यवस्था को लाकर तोड़ मड़ोड़ करके सामने ला कर रख रही थी, और वो चाह रहे थे कि लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को ना सुन करके उन सिद्धांतों पर पालन कर सकें जो मनुष्य के द्वारा अब तैयार किए गए थे। और मेरे प्रियो, आज भी ऐसा ही है, बदलाव नहीं है, आज भी ऐसा ही है कि बहुत सारी झूठी शिक्षाएं चारों ओर फैली हुई हैं। संपन्नता की शिक्षा कितनी फैली हुई है, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है, त्रिएकता को तिरस्कार करते हैं। जब हम अलग 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 चीज़ों में आते हैं तो हमें मालूम चलता है, और इसलिए मुझे और आपको सुसमाचार को जाना बहुत ज़रूरी है। जब तक मैं और आप सही और सिद्ध सुसमाचार को नहीं जानेंगे, हम बड़ी सरलता से कन्फ्यूज हो सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं, और उन झूठी शिक्षाओं की तरफ हम धकेले जा सकते हैं। सो ये समय थे। तो पहले परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर पवित्र सिद्धांत को जाता, ऐसे सिद्धांत को जो पवित्रता से शोभायमान हो, ऐसे सिद्धांत को जो पवित्र हो, जिसमें कोई मेल मिलाप ना हो, जिसमें कोई झूठी शिक्षा सम्मिलित ना हो, ऐसे सिद्धांत को परमेश्वर मसीह चाहता है। तीसरी बात, मसीह समर्पित शिष्यों को चाहता है, ना केवल उस शिष्यों को पहचानता है, लेकिन मसीह समर्पित शिष्यों को चाहता है। यदि आप अपने आप को, मैं और आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का शिष्य और शिष्या बोलते हैं, तो मेरे और आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित होना चाहिए, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के मार्गों में चलने के लिए, प्रभु की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें देखना है। ध्यान रखिएगा, ये जो 7 सिद्धांत मैं आपके सामने डाल रहा हूँ, जब हम उन कलीसियाओं के विस्तार में जाएंगे तब हम देखेंगे किस रीति से उसमें के साथ वो मिलते हैं। समर्पित शिष्य को चाहता है। सो मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। चौथी बात, मसीह पवित्र शिष्य को चाहता है, ना केवल ये, पवित्र उसके लिए सबसे बड़ी बात है। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर, आरंभ से बार 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 व्यवस्था की पुस्तक भरी पड़ी है, और परमेश्वर बार बार इस बात को शिक्षा देता है कि परमेश्वर पवित्र है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पत्रियों में भी इस बात को पाते हैं, पत्रस कहता है, तिसलों का लेखक कहता है, पौलुस तिसलों को लिखते हुए कहता है परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है। और इसलिए अवश्य है कि परमेश्वर जो पवित्र है उसके शिष्य भी पवित्र हों, और इसलिए मेरे और आपके जीवन में पवित्रता का स्थान होना चाहिए, हमारी सोच में, हमारी भाषा में, हमारे कार्यों में, हमारी इच्छाओं में। कई बार हमारे मुंह में ऐसे शब्द रहते हैं जो अपवित्रता को दर्शाते हैं, सो हमें सावधान रहना है, क्योंकि परमेश्वर शिष्य से पवित्रता चाहता है। पांचवी बात, मसीह चाहता है कि उसकी कलीसिया निरंतर आगे बढ़ती रहे। मसीह की इच्छा यह है कि कलीसिया उसके आगे बढ़ती रहे। कैसे कलीसिया उसके आगे बढ़ती रहेगी, जब उसके सुसमाचार का कार्य सच्चाई के साथ कलीसिया पूरा करेगी। मेरे प्रियो, हम और आप, प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे और आपको परमेश्वर ने बचा लिया, लेकिन क्या मेरे और आपके द्वारा कोई दूसरा बचाया गया है? प्रभु ने मुझे और आपको बचा लिया, लेकिन क्या मेरे द्वारा या आपके द्वारा किसी दूसरे कोई दूसरा बचा है? और परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके द्वारा दूसरा बचाया जाए। जब दूसरा बचाया जाएगा तो कलीसिया आगे बढ़ेगी। कलीसिया सुसमाचार एक व्यक्ति से दूसरे के पास, दूसरे के पास से तीसरे के पास, तीसरे के पास चौथे पास, इस तरह से बढ़ता है। स्वयं मजबूत होना जरूरी है, स्वयं दृढ़ होना जरूरी है, स्वयं परमेश्वर के ज्ञान को, वचन के ज्ञान को प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी आत्माओं को जीत करके परमेश्वर की कलीसिया में लाना ये जरूरी है। और यदि सियोन कलीसिया के विश्वासी लोग परमेश्वर सामने प्रार्थना करने लगे, प्रभु जी काश 1 साल में 1 आत्मा मेरे द्वारा प्रभु आपके पास आ जाए, तो जरूर कलीसिया और अधिक बढ़ सकती है। छठी बात, परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक प्राणी का उद्धार हो। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी प्राणी नाश हो, कोई भी प्राणी नाश, लेकिन उसकी इच्छा ये, उसकी मनसा ये, हर एक व्यक्ति चाहे किसी जाति का हो, किसी भाषा का हो, किसी देश का हो, किसी कुल का हो, प्रत्येक व्यक्ति उद्धार को प्राप्त कर सके। पौलुस जब लेटर लिख रहा है तो उसमें कहता है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, देश के नागरिकों के लिए प्रार्थना करें, ताकि उनके समय में अमन और चैन रह सकें। और साथ ही साथ परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो, परंतु चाहता है हर एक को मन फिराव का अवसर मिले और वो उद्धार को प्राप्त करें। परमेश्वर की इच्छा है प्रत्येक प्राणी, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, किसी विशेष भाषा में नहीं, किसी विशेष कुल में नहीं, किसी विशेष और समुदाय का नहीं, लेकिन जगत से, संसार के लोगों से प्राप्त, चाहे वो किसी प्रभु में थे, कहीं के थे, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। सो परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो। अंतिम बात क्या है? परमेश्वर सभी उद्धार पाए लोगों को इनाम देगा, पुरस्कार देगा। प्रत्येक उद्धार पाए लोग परमेश्वर के उसे इनाम को प्राप्त करेंगे, उन इनामों को भी देखेंगे जो परमेश्वर विश्वासियों को देगा। सो अभी हम फाउंडेशन लेकर रहे हैं। सो यहाँ पर वो कहता है सात कलीसियाओं के नाम, जो वो कलीसियाँ हमने देख ली, और कलीसियाओं के साथ साथ उद्धार सिद्धांतों को भी देख लिया। जब हम आगे बढ़ते हैं, अब यूहन्ना क्या देख रहा है? परमेश्वर पिता अपने पुत्र को, पुत्र के द्वारा पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्गदूत को, स्वर्गदूत के द्वारा यूहन्ना को, ये बात पहुंचाई जा रही है। लेकिन यूहन्ना क्या देख रहा है? यूहन्ना उस प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कैसा परमेश्वर है। और पूरे प्रकाशित वाक्य में लगभग 32 उपनाम है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए टाइटल्स हैं, उपनाम है, और कम से कम 8 या 9 नामों का हम देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से उस उपनामों के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया है, जिसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता लेकर हम चल रहे हैं, वो कैसा है, ये बात जरूर जानना जरूरी है। जितना अधिक हम उस परमेश्वर को जानते हैं और उतना अधिक हम उसके करीब आते हैं। तो जब हम इस बात को देखते हैं तो आगे चल के सबसे पहले वो कहता है, पहला अध्याय उसके 5वें पद में, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी, सबसे पहले बात विश्वास योग्य साक्षी, ये साक्षी यीशु मसीह की है, उस साक्षी को, उस गवाही को, जो कुछ भी प्रकाश वाक्य में आगे चल करके हम पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जो भेद की बातें, जो पर्दे खुलेंगी, उन खुलेंगे, चाहे पत्रियों के, चाहे इन कलीसियाओं के द्वारा है परमेश्वर संदेश पहुँचाना जा रहा है, चाहे और भी भविष्यवाणियाँ हैं उनको खोल रहा है वो, जो कुछ भी है, जो कुछ भी, किसके द्वारा? विश्वास योग्य साक्षी के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से एक विश्वास योग्य साक्षी के रूप में संसार में आए। पुत्र ने पिता की साक्षी दी, ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा पुत्र की साक्षी देता है, पुत्र पिता की साक्षी देता है। और यूहन्ना के सुसमाचार को अगर आप बहुत बार पढ़ेंगे तो बार बार इस बात को देखते हैं कि वहां पर 5वें अध्याय में कई बार साक्षी शब्द आया है, क्योंकि पुत्र ने पिता की साक्षी दी है और वो साक्षी सच्ची है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि प्रकाश वाक्य की पुस्तक का जो आरंभ हुआ है कलीसिया के साथ आरंभ हुआ है। कलीसिया की स्थापना ही विश्व में स्वर्ग पर उठाया गया, स्वर्गदूत ने कहा जैसे हो जाएगा वैसे तुम उसको आते देखोगे, और तब उसके बाद आगे चल करके फिर वो कलीसिया युग आरंभ होता है, और धीरे धीरे करके वो सारी चीज बढ़ती चली जाती है। दूसरी बात वो कह रहा है, मृतकों में से जी उठने वालों में पहला उठा। क्यों प्रभु यीशु मसीह को पहला उठा कहा गया? सबसे पहले वही था जो मृतकों में से जी उठा। क्या और बाइबल में नहीं है जो लोग मृतकों में जी उठे? जरूर, लाजर मुर्दों में जिलाया गया, लेकिन कुछ समय बाद लाजर मर गया। पिछली बार भी मैंने कहा था जितने भी जिलाए गए, चाहे पतरस के द्वारा, चाहे पौलुस के द्वारा, चाहे यीशु मसीह द्वारा, इन आश्चर्य कर्मों के द्वारा, जिन लोगों भी प्रभु ने जीवन दिया, जिलाए गए, उनकी मृत्यु हो गई। अब वो प्रतीक्षा में है, यीशु मसीह जब आएगा तो उसके साथ वो भी, मेरे और आपके साथ उठाए जाएंगे। लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह है जो मृतकों में से उठा, वो पहला उठा है, प्रथम है। अब उसके बाद जितने भी हैं वो सब उसके पीछे हैं, अर्थात जो कलीसिया को उठा ले जाएगा या विश्वासियों को उठाएगा वो उसके पीछे हैं, लेकिन सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह है। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग पर जाकर विराजमान है। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। और 4 और 5 अध्याय में जब हम आते हैं तो बहुत सुंदर रीति से उस सिंहासन को देखते हैं, जहाँ पुत्र विराजमान है, जहाँ पिता विराजमान है। लेकिन आगे चल करके तो जियोटम है, राजाओं का शासक। राजाओं का शासक क्या मतलब है? राजाओं पर भी प्रभुता करने वाला है, जितने भी राजा हुए, और बहुत सारे राजा आए हैं, उन्होंने अपना शासन किया है, उन्होंने इसराइलों पर, यहूदा पर, एक दूसरे पर जो जो राज विभाजन हुए, जैसे मैं पिछली बार बोल रहा था कि दानियल की पुस्तक जो 12 अध्याय हैं, दूसरे भाग में 7 अध्याय से लेकर के 12 अध्याय तक, इन भागों में 4 अलग अलग राज्यों के बारे में वर्णन है और चौथा राज रोम राज था जिसमें प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। लेकिन उन सब शासकों पे, चाहे उन्होंने लोगों को सताया है, चाहे उन्होंने लोगों से छीना है राज, चाहे जो कुछ भी, उन सब कुछ पर वो प्रभुता करने वाला है और उसका शासन वो है जो अनंत का शासन है। सबका शासन एक सीमित है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का शासन सीमित नहीं है, अनंत का शासन है। तब आगे चलकर कहता है वो अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अनुग्रह शांति, अनुग्रह का मतलब क्या है? वो अनुग्रह जिस अनुग्रह में होकर उसने मुझे और आपको बचा लिया, मैं और आप इस लायक नहीं थे। अनुग्रह एक मुफ्त दान है जो उसने मेरे और आप पर करके मुझे और आपको उस पाप के दंड से या उस नरक के आग से बचा लिया है। ये उसका अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ, आपके ऊपर हुआ। यदि आपने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया, तो इसका अनुग्रह हुआ कि उस अनुग्रह के द्वारा उसने मुझे और आपको नाश होने से बचाया। शांति, शांति वो आशीष है हर एक परिस्थिति में मनुष्य के मन और विचारों को सुरक्षित रखती है प्रभु यीशु मसीह में, जिनके ऊपर अनुग्रह हुआ। और तब वो आगे चल के कहता है जो हमसे प्रेम रखता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रेम का क्या प्रतीक था? उस प्रेम का प्रतीक ये था कि जब हम नाश हो गए थे, नाश हो रहे थे, दंड की आज्ञा लग चुकी थी, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहते हैं। पाप की मजदूर तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब ये सब कुछ हो गया था, उस स्वयं मनुष्य बनकर इस प्रति प्यार आ गया, उसने अपने प्रेम को मेरे और आपके प्रति, संसार के प्रति इस प्रकार से दर्शाया कि वो मेरे और आपके लिए वो कष्ट लेके या उस पीड़ा को सहने के लिए तैयार हुआ, मारा गया, गाड़ा गया। लिखा हुआ है कि जो हमसे प्रेम करता है और हमें एक लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। कोई नहीं था जो मुझे और आपको पापों से छुड़ा सकता था। अब ये परिचय है, इसीलिए मैंने कहा कि यूहन्ना प्रकाशवा के पहला अध्याय पूरी रीति उस प्रभु यीशु मसीह का वो परिचय दे रहा है, ताकि मैं और आप जान जाएं, उसके धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, उसके अधिकार को देखेंगे, क्यों ये सब कुछ उसके अधिकार में आया है, क्यों वो इसमें इस सारे भेद की बातों को, जो भेद की बातें ढकी हुई हैं, क्यों उसके पास अधिकार है कि उसको खोल सक रहा है। कारण ये है कि वो ऐसा परमेश्वर है, ऐसा प्रभु है, ऐसा शासक है, ऐसा राजा। तो उसको हमें समझना है। और मेरे प्रिय, बहुत जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अच्छी रीति से समझे, जाने, उस पर विश्वास करें, क्योंकि एक दिन हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। धन्य है वे जो आज आनंद के साथ उस पर विश्वास करके अपने सरों को उसके सामने झुकाते हैं, सोचते हैं हमारे प्रभु के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। तीसरी बात, और हमें एक राज तथा अपने पिता परमेश्वर के याजक बनाया है। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 9-10 में भी वो कहता है कि चुनी प्रजा, याजकों का समाज, और उसने ना केवल याजक पद दिया, लेकिन मेरे और आपके पास ये अधिकार दे दिया कि हम एक दिन उन 12 गोत्रों के लोगों का न्याय करेंगे। वो महान याजक है, उस महान याजक ने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया। अब मैं और आप कोई बलिदान नहीं करते, लेकिन प्रभु का धन्यवाद उसके उस प्रेम के लिए, उसके पवित्र लहू के लिए, जिसमें हो करके उसने मुझे और आपको अपने बराबर तक का एक स्थान दे दिया कि अपने समान उसने याजक बना दिया। और तब उसके साथ कहता है उसकी महिमा और सामर्थ्य युगानुग हो, आमीन। आपको मालूम, जब हम यूहन्ना उसके 17 अध्याय में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह की अंतिम प्रार्थना, और अंतिम प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं 17 अध्याय उसके 5 पद में, हे पिता, तू मुझे अपनी उस महिमा में शामिल कर, या अपनी वो महिमा दे जो जगत की उत्पत्ति के समय थी। जब जगत की उत्पत्ति, जब जगत संसार की उत्पत्ति नहीं थी, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा साथ रहते थे, तो ना केवल पिता महिमित था, लेकिन पुत्र महिमित था और पवित्र आत्मा महिमित था। त्रिएक परमेश्वर महिमा से भरे हुए थे, महिमा से भरे हुए थे, और उसने वही महिमा, अपनी महिमा को उसमें मनुष्य में डाला था जो निष्पाप बनाया गया था, लेकिन पाप के कारण सब कुछ बिगड़ गया। परंतु अब उस महिमा में मुझे और आपको प्रवेश कराने के लिए वो दोबारा क्या कर रहा, पुनः क्या कर रहा है, अपने आप को मनुष्य बना के ला रहा है, बलिदान हो रहा है, और इसीलिए से पहले क्रूस पर जाए वो कह रहा है वो महिमा में मुझे शामिल कर। और मेरे प्रियो, ना केवल वो महिमा में शामिल है जी उठने के द्वारा, लेकिन उसने मुझे और आपको भी अपनी महिमा शामिल कराया। इसलिए मैंने बार बार कहा कि पहले दो अध्याय आखिर दो अध्याय, पहले दो अध्याय जो महिमा से परिपूर्ण है, प्रकाश वाक्य आखिरी दो अध्याय महिमा से परिपूर्ण है। परमेश्वर ने मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा उस महिमा का भागी बनाया है। कहता देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। ये जकरिया नबी उसका 12वें अध्याय की भविष्यवाणी है। जकरिया में उसके लिए पहले से भविष्यवाणी की गई थी। क्यों? देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। बादलों के साथ हो गया और फिर बादलों के साथ आएगा और हर एक आंख उसे देखेगी। प्रभु यीशु मसीह के जब आप आगमन की बात करते हैं, अभी हम आगे चलेंगे, लोगों के कई तरह से अलग अलग विचार हैं, बहुत सारे विचार हैं, पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को समझने में सहायता करता है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रथम जो आगमन होगा वो संतों के साथ होगा, जिसको बोलते हैं रैप्चर। थिस्सलुनीकी पत्री में बहुत ही हर थिस्सलुनीकी पत्री में हर अध्याय में एक या दो पद जरूर मिलेंगे आपको जो प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर आने के हैं। वो बादलों पर आएगा और अपने लोगों को वो ले जाएगा, लेने के लिए आएगा, लेकिन उसके कुछ समय बाद, एक समय पीरियड है, उसके बाद फिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आएंगे और तब जगत का न्याय करेंगे, जगत का न्याय करेंगे। ये सारी भेद की बात है। लेकिन उसको कौन उसको आंखें देखेगा? लिखा है हर एक आंखों से कौन आंखें देखेगी, वरन वे भी देखेंगे जिन्होंने उसे भेजा था। किन लोगों ने उसको भेजा था? किन लोगों ने? ये जकरिया नबी के 12वें अध्याय में जो भविष्यवाणी की जा रही थी, वो अपनों के बीच में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना कहता है वो अपनों के बीच में आया और अपनों ने इसे ग्रहण नहीं किया। कौन अपनों ने? वो यहूदी कौम में आया था, यहूदी लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया, उन्होंने उसको भेजा। जिन्होंने उसके आश्चर्य कर्मों को देखा, जिन्होंने रोटियां खाई, जिन्होंने जो तृप्त हुए, जिनके जिनको प्रभु ने चंगाई दी, जिन्होंने उसके आश्चर्य कर्मों को देखा, वे सब उनके लिए लिखा है जिन्होंने उसको भेजा था वे आंखों से देखेगी वरन वे भी, और पृथ्वी के समस्त कुल उसके कारण विलाप करेंगे। कौन से समस्त कुल? वो समस्त कुल जिन्होंने उसका तिरस्कार किया है। ठीक है, भेद उसके भेदने में शामिल थे, उसके बाद भी बहुत सारे लोग प्रभु में आए। अभी भी यहूदियों में से बहुत सारे लोग प्रभु के राज में शामिल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग पर विश्वास कर रहे हैं। यहूदी लोग व्यवस्था को मानते हैं, आपको शायद मालूम होगा, अगर अध्ययन करते हैं 70वीं AD में जो मंदिर था, जिसको लिखा गया जब प्रभु जब हेरोदेस का मंदिर बन रहा था और शिष्य कहने लगे प्रभु शमंत का, इस देह को तुम गिरा दोगे, 3 दिन में मैं खड़ा करूंगा, तो उन्होंने सोचा मंदिर के बारे में बात कर रहा है। उन्होंने कहा इस मंदिर को बनाने में तो 40 साल लगे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो अपने बारे में कहते हैं। पर वो मंदिर आगे चल करके रोमी शासन में, रोमी ने शासन ने आक्रमण किया, और जब पहले भी मैं बता रहा था प्रशासन ने भी, और वो मंदिर को तहस नहस कर दिया। अब केवल एक दीवाल है जिसको विलाप की दीवाल बोलते हैं, और ये यहूदी लोग उसी दीवाल के पास जाकर के आज भी वहां पर विलाप करते हैं, क्योंकि मंदिर नाश हो गया, मंदिर की शोभा खत्म हो गई वो मंदिर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको मंदिर बनाया, अब उसकी जरूरत नहीं है। तब आगे चल के वो कहता है कि वो विलाप करेंगे। मेरे प्रियो, जिन्होंने उसका तिरस्कार किया है, ये मेरे और आपके लिए चेतावनी है। यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी उसका तिरस्कार करते हैं, तो एक समय आएगा मुझे और आपको विलाप करना पड़ेगा, और प्रभु मुझे और आपको बचाए ऐसे संकट में। तब आगे चल के 6-8 पद में, प्रभु परमेश्वर जो था, जो है, जो था, जो आने वाला और सर्वशक्तिमान है, जो था, जो है, जो था, जो आने वाला, अर्थात अनंत का परमेश्वर, उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, वो ऐसा परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, वो कह रहा है मैं आदि हूँ, मैं अंत। इब्रानी भाषा के ये ए और जेड शब्द हैं, जैसे इंग्लिश में ए से कोई भी अक्षर आप देखते हैं तो ए से और जेड के बीच में, ठीक उसी तरह से मैं आदि और अंत हूँ, अल्फा और ओमेगा हूँ, परमेश्वर धन्यवाद। अब ये सारी बातें वर्णन करता है, तो मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के उन बातों को देखना है जो सचमुच में जो उसने कही। तो 3 मुख्य बातें हैं, उसने अपने लहू से मेरे और आपके पापों को क्षमा किया है, उसने मुझे और आपका अपना याजक बनाया है, उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया है। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, ऐसा परमेश्वर है। वो बादलों पर आएगा, ये उसके आने की भविष्यवाणी है। 9वें पद में, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कारण, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर यौना एक अपने आप को वर्णन कर रहा है क्यों वो पद्मोस टापू पर पहुंचाया गया और पद्मोस टापू कहां था, इसको ध्यान देना। कह रहा है मैं यौना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कारण क्लेश राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और उस यीशु की गवाही के कारण पद्मोस नामक द्वीप में था। ये यूनान और इटली के बीच में, यूनान और इटली के बीच में एक स्थान और एक बहुत ऊंची पहाड़ी जैसी थी, लगभग रोम से 40 किलोमीटर। और जो कोई जिसको भी पनिश किया जाता था या दंड दिया जाता था उसको वहां रखा जाता था। जैसे आपको अगर मालूम है इतिहास, अगर आपको मालूम है भारत देश का इतिहास, अंग्रेज लोग जब किसी को काला पानी करते थे, जैसे अंडोनिगमर, वो वहां पर लोग जा नहीं सकते थे, एक बहुत समुद्रीय, उस समय यात्रा आसानी होती थी, बिल्कुल कोने में और बंदी जेल खाना रहता था। वहां पर यौना को उसके पैरों को चेन से बांध कर रखा गया था। क्यों बांध कर रखा था उस स्थान पर, उसको क्यों बांध कर रखा था? लिखा है वो परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण, दो कारण थे। उसने परमेश्वर के वचन से समझौता नहीं किया था। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। यहाँ चर्च में आ रहे हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं, गांव गए फिर क्या करें, मजबूरी है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। सुसमाचार के लिए खड़ा होना सीखना है। मसीह जीवन एक अलगाव का जीवन है और जब तक आप अलगाव में नहीं आएंगे, जरूर उसमें सतावनी का सामना करना पड़ता है। आजकल जो सतावनी हो रही है कई सारे अलग अलग कारण से, माफ कीजिएगा, एक तो कई जगह हमारी भी गलती है, कई जगह हमने परमेश्वर के वचन की जगह तेल और पानी को चर्चेज में बेचना बंद शुरू कर रखा है। आओ भैया तेल ले जाओ, पानी ले जाओ, दुआ करेंगे तुम चंगे हो जाओगे। प्रभु हमारा ऐसा नहीं, प्रभु दुकान लगा के नहीं बैठता, और तेल और पानी कहीं बाइबल में नहीं लिखा हुआ, इसको सावधान रहिए। मैं हमेशा इस बात को सिखाता हूँ लोगों को और बहुत विरोध करता हूँ। अगर आप किसी ऐसी कलीसिया के से निकल कर आए हैं जहाँ तेल और पानी बिकता है, आप सही कलीसिया में नहीं थे, आपको वहाँ वचन सही नहीं दिया गया, आपको सुसमाचार वहाँ सही नहीं मिला। और इसलिए अच्छा है कि आप सुसमाचार की खोज करिए। परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर में चंगाई देता, हम प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए, आज भी की गई, बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, करेंगे प्रार्थना, लेकिन रुमाल छुआ के नहीं देंगे, तेल फूंक कर नहीं देंगे, भैया रख लो बोतल देख लेना, और नहीं होने। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह हमारा चंगा देने वाला, और इन अंतिम दिनों में हमें बहुत अधिक सावधान रहना है। और कई जगह इस कारण भी ये सारी समस्याएं आ रही हैं। परमेश्वर का वचन सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है हमारे आप में, इसको स्थान दीजिए, इसको लीजिए, इसको अपने हृदय में। वो कह रहा परमेश्वर के वचन के कारण, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन से समझौता नहीं किया था। परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर का वचन अनंत है, और परमेश्वर के वचन में लिखा है यौना उसका 12 अध्याय उसके 48 पद में, और अंतिम दिनों में उसको दोषी ठहराने वाला एक है, अर्थात परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकले हैं। और मुझे और आपको परमेश्वर के वचन का पालन करना सीखना है और प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु जी, परमेश्वर पिता, मुझे अपने वचन का पालन करना आप सिखाइए। दूसरी बात कहता है यीशु की गवाही के कारण, किसकी गवाही दे रहा था? प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा। और उस समय ये रोमी राज के लोग बहुत ज्यादा उन पर जोर दे रहे थे, उस समय बहुत बहुत सतावनी थी। अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो उनको रोमी शासकों ने बहुत ज्यादा सतावनी में मसीहों को दिया, 300 साल उन्होंने इतना बुरी तरह से मसीहों को सताया था, और उसी का परिणाम था ये पद्मोस टापू में इतनी दूर वहां पर रखा गया था और रख करके उस कटघरे में था। पौलुस के बारे में भी हम देखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एकांत, उससे कोई मिल नहीं सकता था, कोई बात नहीं कर सकता। ऐसे समय में, जिसको मैंने कहा काला पानी, ऐसे समय में परमेश्वर ने उससे बातें की हैं और उससे अपने भेद को प्रकट किया है। कह रहा है पद्मोस नामक द्वीप में था मैं, प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और मैंने अपने पीछे तुरही की ध्वनि का एक बड़ा शब्द कहते सुना। क्या कहते सुना? ये कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख और सातों कलीसियाओं, अर्थात इन कलीसियाओं को भेज दे, जो सात कलीसियाओं के नाम लिया। जो तू देख रहा है, जिसको मैं तुझे दिखा रहा हूं, उसको लिख और इन सातों कलीसियाओं को भेज दे, ताकि कलीसिया जान जाए कि इनका विश्वास कैसा है, इनका जीवन कैसा है, इनका आत्मिक जीवन कैसा है, इनका समझौता का जीवन है। और जब हम दूसरे तीसरे अध्याय में आते हैं तो दूसरे तीसरे अध्याय में उन सात कलीसियाओं के बारे में, जिसको हम आगे चल के देखेंगे, उनका वर्णन है। और उनमें उन सारी कलीसियाओं, सातों कलीसियों की उनकी विशेषताएं और गुण और अवगुण दोनों दिखाए गए। और उसके द्वारा परमेश्वर उनको चिताता है। और मेरे प्रियो, ये सातों कलीसिया आज वर्तमान में मेरे और आपके आत्मिक जीवन को सुधारने के लिए, संवारने के लिए है। तो कह रहा है उनको लिख ले, 12 पद से लेकर के जल्दी से। तब मैं उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने को मुड़ा, और फिर कर मैंने सोने के सात दीवट देखे, सोने के सात दीवट देखे, और उन दीपदानों के मध्य मनुष्य के पुत्र, मनुष्य के, दानियल की पुस्तक में हम मनुष्य के पुत्र का वर्णन पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के संकेत है, प्रभु यीशु मसीह का जो उपनाम है। यौना भी वर्णन करता है, यौना सुसमाचार उसके पहले अध्याय में करीब 14 उपनाम है, समय नहीं है जो मैं उनको पाप के सामने लाऊं, लेकिन अगर घर में आज जाकर अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा, वहां पर भी हम मनुष्य के पुत्र के पाते हैं। ये मनुष्य का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उन दीपदानों के मन, दीपदानों के मन में प्रकाश जल रहा है। अब पुराने नियम में जब हम निर्गमन में जाते हैं तो निर्गमन में 20 अध्याय देखते हैं, 12-13 अध्याय तक इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला गया, उसके बाद वो यात्रा में आते हैं। 20 अध्याय में परमेश्वर के द्वारा मूसा को जो आज्ञाएं दी गई उनका एक्सप्लेनेशन, उनका उनको समझाया गया है। लेकिन 25 अध्याय से जब आप निर्गमन की पुस्तक में जाते हैं तब परमेश्वर वाचक के संदूक के बारे में बताता है। और वाचक का संदूक, अभी हम पिछले दिनों भाइयों के साथ सुबह मॉर्निंग डिवोशन में उसको देख रहे थे, सीख रहे थे। और वाचक का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान माना जाता था, और उसमें ये सात दीपदान रहते थे। और ये दीपदान जो है कभी भी इसकी जो बत्ती है या जो ज्वाला है वो बुझती नहीं थी, इसकी रोशनी बुझती नहीं थी, कभी नहीं बुझती। उसके लिए लेवी वंश से अलग लोग चुने गए थे, और वो समय बे समय में उसको साफ करके तेल लगाया करते थे, और उसको कभी बुझते नहीं। मुझे नहीं मालूम आपने दिल्ली में कभी उनको देखा होगा जो शहीदों का हुआ है, अमर जवान ज्वाला जो है वो पहले तो किसी और चीज से तेल वगैरह से था, आज तो गैस से चलाया जाता, लेकिन वहां पर भी हमेशा वो प्रकाश रहता, कभी बुझ नहीं सकता। ठीक है, वो इस बात का था कि शहीद होते हैं, लेकिन हम पुराने नियम में इस बात को आते हैं, वही चित्रण हम यहाँ पर नए नियम में देख रहे हैं कि अब परमेश्वर एक नया अपनी उपस्थिति को बनाने जा रहा है किस रीति से। और तब हम देखते हैं कि कैसे ये सात दीपक हैं जिनके बीच में प्रभु यीशु मसीह वास कर रहा है, जो सचमुच कह रहा मनुष्य देखा पैरों तक चोगा पहने हुए और छाती पे एक सुनहरा पट्टा बांधे हुए था, उसका सिर, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, किस रीति से बाल श्वेत थे, उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला से दृश्य थे, उसके पैर ऐसे चमकदार पीतल के समान थे जो भट्टी में तपा कर चमका गया हो, उसकी वाणी महाजलनाद जैसी थी। अब शब्द देखिए, पैर हैं, छाती है, सिर है, बाल हैं, पांव हैं, आंखें हैं, सब कुछ एक एक चीज को जो उसमें किस प्रकार से वो व्यक्ति अर्थात प्रभु यीशु मसीह का क्या रूप दिखाया जा रहा है। और इन सब कुछ का एक अर्थ था जो प्रभु यीशु मसीह की महानता को, श्रेष्ठता को, पवित्रता को, महिमा को प्रदर्शित करता है। प्रभु यीशु मसीह की महानता को, प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को, प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता को प्रदर्शित कर रहा है। ये सारी चीज सुलभ में वो दाहिने हाथ में सात तारे लिए हुए हैं, सात तारे लिए था, और उसके मुख से दो धारी तलवार निकलती थी, परमेश्वर का वचन। उसका मुख मंडल सूर्य के सदृश दमक रहा था। जब मैंने उसे देखा तो क्या हुआ, मैं मृतक के समान उसके पैरों पर गिर पड़ा। क्या हुआ उसके आगे, क्या हुआ? तब उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा और कहा, भयभीत ना हो, मैं प्रथम हूं, अंतिम हूं और जीवित हूं। मैं मर गया था और देख, मैं युगानुग जीवित हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। सब यीशु मसीह के बारे में, सब यीशु। मैं मर गया था, अब अनंत युगानुग तक जीवित हूं, कोई उसके पास मौत नहीं है। क्या है? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां उसके हाथ में, जिसको चाहेगा वो अधोलोक में डालेगा, जिसको चाहेगा वो मृत्यु में डालेगा, उसके पास अधिकार है। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं और जो बातें इनके पश्चात होने वाली हैं, ध्यान दीजिएगा, जो बातें हो रही हैं, जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं, जो बातें इनके पश्चात होने वाली हैं, उन्हें लिख ले, उन सात तारों का रहस्य जो तूने मेरे दाहिने हाथ में देखे और सात स्वर्ण दीपदानों का रहस्य यह है, सात तारे सात कलीसियाओं के दूत हैं और सात दीवानदान सात कलीसियां हैं। खुद बता रहा है और खुद समझा रहा है। प्रभु यीशु मसीह जो कुछ लिखवा रहा है उसको समझाता चला जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि खुल रहा है, पर्दे खुल रहे हैं। कई बार परमेश्वर के वचन को हम समझने के लिए अपनी खोपड़ी लगाते हैं और ऐसा ऐसा होगा ना, ऐसा होगा, ये होगा, और उसमें फिर हम गलत में चले जाते हैं। सो मैं सावधान रहना है। बाइबल बाइबल को प्रकट करती है, बाइबल बाइबल का अर्थ बताती है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन अर्थ बताता है। और जो कुछ भी आगे आने वाले हम देखेंगे वो इसी के अंदर से देखेंगे, बाहर से नहीं देखेंगे। बाहर क्या घटना हो रही, कैसे घटना, तो शुरू से होते रही, सतावनी शुरू से हुई, विरोध शुरू से हुआ, राजाओं की लड़ाई शुरू हुई थी, सब कुछ हुआ, ये सच है। जरूर बाइबल के विद्वानों ने इन सारी बातों को देख करके बहुत सारे जो राष्ट्र हैं उनके नामों का वर्णन किया है। उस समय राष्ट्र का नाम ये था, आज नाम ये, अध्ययन से पता चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह महान है। मैं जो मुख्य बात आज आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, पहले अध्याय में मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह को समझना है। मुख्य बात, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह को जानना है, क्योंकि वो सर्व अधिकारी है, वो सर्व न्यायी है, वो सर्व अधिकारी है, वो सर्व न्यायी है। और ये जितना भी चित्रण देख रहे हैं हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देख रहे हैं, और उसका एक ही उद्देश्य है, प्रभु यीशु मसीह इस प्रकाश वाक्य के द्वारा उन कलीसियाओं के को एक संदेश पहुंचा रहा है, ताकि उन कलीसियाओं को देखते हुए मैं और आप वर्तमान युग को और भविष्य के युग को पहचान सकें, जो सात कलीसियाँ सात युग में कैसे बांटी गई हैं, और उसके अनुसार तब हम बिना किसी समझौते के अपने जीवन को तैयार करते हुए परमेश्वर के साथ जीवन को आगे बढ़ा सकें। यह मुख्य उद्देश्य है। तो प्रकाश वाक्य की पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह मुख्य है, चरित्र है, मुख्य, और उसको किस प्रकार से परमेश्वर पिता ने, किस प्रकार से परमेश्वर के आत्मा ने, किस प्रकार से यूहन्ना ने मेरे को और आप तक पहुंचाया है, पुत्र क्या है, पुत्र कैसा है, पुत्र का अधिकार क्या है। वो अनंत का परमेश्वर है, और इसलिए मुझे और आपको उसकी आराधना करने से पीछे नहीं हटना है, इसलिए मुझे और आपको उस पर विश्वास करने से पीछे नहीं हटना है, इसलिए मुझे और आपको उसको उसकी प्रभुता को स्वीकार करने से पीछे नहीं हटना है। मुझे जाना है प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है, प्रभु यीशु मसीह है, और मैं उसका तिरस्कार नहीं कर सकता। अगर मैं तिरस्कार करूंगा तो मैं दंड के ठहरूंगा। और मेरे प्रियो, अंतिम बात, काश जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, क्या सुनने के बाद आपके अंदर प्रतिक्रिया होती है कि आप एक कदम और अधिक प्रभु यीशु मसीह की निकटता में आ जाए, एक कदम और प्रभु यीशु मसीह की निकटता में। अगर यह अभिलाषा नहीं है कि आप एक कदम और प्रभु यीशु मसीह की निकटता में आ जाए, मेरे प्रियो, शायद परमेश्वर के वचन का कार्य और परमेश्वर के आत्मा का कार्य मेरे और आपके जीवन पूरा। प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रभु यीशु मसीह को जान सकें, प्रभु यीशु मसीह पहचान सकें, और मेरा और आपका जीवन अपने कार्यों में, अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में, अपनी पवित्रता में एक और कदम उसकी निकटता में बढ़ सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे।